और शांति 28 अप्रैल 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे शाम को 4 बजे 8 बजे मुरली मंथन करते। आप चारों समय एक ही गूगल मीट के लिंक पर या एक ही यूट्यूब लाइव के लिंक पर जुड़ सकते और ये भी रोजाना के लिए एक ही रहते। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है हमारे हित में तो वो भी हमें दे सकते। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? फिर क्या है? एक शरीर विनाश होगा दूसरा शरीर मिल जाएगा। शरीर दुख देता है, हम कितना प्यार से इसको धोते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, कितना श्रृंगार करते हैं, बाल काले करते हैं, रंग लगाते हैं, कहते जी तो दुख देने वाला है। कितने अच्छी अच्छी चीजें बाजार से खरीद के लाते हैं, फ्रूट खिलाते हैं, जूस खिलाते हैं, रोटियां खिलाते हैं, तो दुख देने वाले तो हम। हाँ जी, नुकसान हो रहा है, हम ऐसे पैसे रोजाना बर्बाद कर रहे हैं। रोटी नहीं खिलानी फिर इसको रोटी नहीं खिलानी चाहिए ना रोजाना। इसलिए आयुर्विज्ञान भी ये कहता है जितना शरीर को जरूरत है उससे थोड़ा कम खिलाओ। ज्यादा खिलाएंगे तो मरेंगे, ज्यादा खाकर के ही मरे हैं, कम खाकर आज तक कोई भी नहीं मरा। इसलिए हमने जीने के लिए खाना है, हमें खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है, जिससे हमारा शरीर ये चलता रहे ताकि हम इस शरीर से श्रेष्ठ कर्म करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए। क्योंकि इस संसार में इस कर्म क्षेत्र पर आने के बाद हमने अपना भाग्य बनाना और बिगाड़ना इसी शरीर के द्वारा। जब हम इस शरीर के मालिक रहते हैं, अपने अनुसार हम इस शरीर को चलाते हैं, तब हम सुखी होते हैं। और जब हम इस शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम दुखी होते। इस बात को हमें समझ में आया, इस बात को महात्मा बुद्ध ने भी, महावीर जैन ने, जैन महावीर ने, महावीर जी ने भी इसी बात को कहा कि ये शरीर दुख का कारण, ये शरीर दुख का कारण है। महावीर जी ने अपना इस बात को बहुत इतना स्ट्रिक्टली लिया कि ये शरीर की इच्छाएं ही हमें दुख देती, इन शरीर की इच्छाओं को मानना नहीं, और यदि गलती से आप मान लेते हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा सजा दो, इसे ज्यादा से ज्यादा कष्ट दो ताकि ये आइंदा उसकी इच्छा ना करे। आइंदा कभी ये अपनी इच्छा ना कर सके इसको इतना कष्ट दो, वो इच्छा दोबारा आए ही ना। मतलब इतना उपवास रखना, इतना दंड देना, धूप में, कड़ी धूप में इसको रखना, ठंड में रखना, मतलब इसको जितना से ज्यादा सजा देंगे ताकि आपको ये कोई इच्छा ना कर। उसने इतना स्ट्रिक्टली पालन किया, इसी कारण जैन संख्या बहुत कम, जैन के अनुयायी इसी कारण बहुत कम। इस शरीर से किसी को दुख नहीं देना, अहिंसा को बहुत अधिक महत्व दिया कि हमारे से किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना, परंतु वो इतना अति में चले गए, इतना अति में चले गए, दुख इतना ज्यादा देने के नियम बना दिए कि उसका प्रचार प्रसार उतना अधिक नहीं होता। अब परमात्मा ने आके बताया, बच्चे इनको बाहर से नहीं रोका जा सकता, इसको रोकने के लिए स्मृति चाहिए, क्योंकि देह दुख का कारण है तो देह को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी कहते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि ये जो अपना शरीर को कष्ट देने की बात थी, क्योंकि हमारा ये शरीर दुख का कारण है और इसको ज्यादा से ज्यादा दुख देने वाली बात जो है ना, महावीर जी ने बहुत स्ट्रॉन्गली कही, बुद्ध ने मध्यम मार्ग लिया, इसलिए बुद्ध को सभी ने स्वीकार किया। तो विनाशी शरीरों से नहीं होना है, बाबा कह रहे थे विनाशी शरीरों से हमारा प्यार नहीं होना चाहिए, क्या विनाशी शरीरों से प्यार करने वाली तुम आत्मा। अब इस बात को महावीर जी ने नहीं माना कि आत्मा तो कहा, परंतु आत्मा क्या है इसके बारे में नहीं बताया। और ये दो चीजें हैं, पुद्गल और जीव, उन्होंने आत्मा की जगह पर शब्द प्रयोग किया जीव का, और शरीर की जगह पर उन्होंने शब्द प्रयोग किया पुद्गल, जीव और पुद्गल। अब हम शरीर को कहते हैं जीव और आत्मा, उन्होंने अपना नया नाम दे दिया जीव और पुद्गल, इसलिए आत्मा शब्द उनके वहां से गायब हो गया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसके बारे में उसने साइलेंस ले लिया, आत्मा को जीव शब्द दे दिया, एक नया रूप उसको दे दिया। और ये जीव जो है ना, जो अपना शरीर है, और उसको ज्यादा से ज्यादा कष्ट देने का, अब सही आधार ना होने पर वो रॉन्ग हुआ। अब परमात्मा कहते बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर है, ये दोनों अलग अलग है, तुम आत्मा एक शरीर से और दूसरा लेते हो। वो नहीं समझते कि जीव शरीर से निकलकर दूसरा जीव लेगा, दूसरा शरीर लेगा, दूसरा पुद्गल लेगा, वहां ये बात नहीं आती, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, महात्मा बुद्ध भी और महावीर भी। जन्म कौन लेता है ये वहां पर नहीं है, वो कहते बस यही है जो है, यही है शरीर, जीव और शरीर पुद्गल, ये दोनों जो है ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक विदेही से प्यार कर, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा को देह की बजाय परम आत्मा से, विदेही से, जो बिना देह वाला है या विशेष देह वाला, विदेही का सही अर्थ है विशेष देह वाला, जिसका विशेष देह है, जो आत्मा को तो अपना लेता है, शरीर को तो लेता है, देही माना शरीर धारण करने वाला, देह माना देह, और देही माना देह को धारण करने वाला, विदेही माना विशेष देह को धारण करने वाला आत्मा, विशेष देह को धारण करने वाला आत्मा। मतलब परमात्मा का आकार तो है, परमात्मा का रूप तो है, परंतु वो विशेष, हम उस रूप को बना नहीं सकते, मतलब वो हमारी तरह देह को धारण नहीं करता, वो विशेष, जो उसका अपना रूप है वो उसका विशेष, इसलिए उसे विदेही कहा। स्पष्ट ना हो रहा हो तो पूछो, देह देह को धारण करने वाला देही, और विदेही माना विशेष देह को धारण करने वाला, जैसे हमारा चित्र है और परमात्मा क्या है, विचित्र है, उसका विशेष चित्र है। हम आत्मा भी विचित्र हो जाती है, क्योंकि बाबा भी विचित्र हो जाता है। जब हम आत्मा है, आत्मा को विचित्र कहें, परमात्मा को भी विचित्र कहें, कह सकते हैं, परंतु हम आत्मा को विदेही नहीं बोल सकते। ये अंतर समझ में आया? हम आत्मा को विदेही नहीं बोल सकते, क्योंकि परम आत्मा विशेष देह, वो विशेष आकार को ही धारण करता और उसके विशेष देह आकार का ही नाम शिव है। देह वाले ना हमारे देह वालों का नाम है, हमारे विशेष देह का या विचित्र का कोई नाम नहीं है। हमारा भी विशेष देह, परंतु उसका नाम नहीं है। हाँ जी,
जब आप सुनते हैं वो ध्यान करके बाबा के साथ जाएंगे तब तो
देख लेना है। तब आप विचित्र हैं, परंतु आपकी देह का नाम नहीं है, इसलिए विदेही नहीं कहेंगे। फिर बाबा भी विचित्र है, हम भी विचित्र हैं, हम आत्मा के जो हमारे आत्मा का जो हमारी शरीर आत्मा का जो आकार है उसका नाम नहीं, शिव बाबा के आत्मा का नाम है, इसलिए उसको विदेही कह रहे हैं। हमारी कोई हमारी विदेह हो भी हम उसका नाम नहीं ले सकते ना। आप आत्मा का, मुझ आत्मा का, जितनी भी दुनिया में आत्माएं हैं उनके विचित्र का नाम नहीं। जबकि हम जाएंगे उसी तरीके से, परंतु उनका उनकी देह का नाम है, उनके चित्र का नाम है, हमारे चित्र का नाम नहीं, क्योंकि उनका आत्मा का ही नाम है। जबकि जाते वक्त हमारा भी शरीर नहीं होगा, परमात्मा का भी ये स्थूल शरीर नहीं है, है ही नहीं, तो हमने परमात्मा के समान होकर जाना है। विदेही कह सकते हैं, परंतु हमारी देह का, हमारी जो विदेह विशेष देह है उसका हमारे पास कोई नाम नहीं। और इस देह को देखते हुए नहीं देखते, जो चीज हमारे काम की नहीं है उसको हम देखते हुए नहीं देखते। अब जो गाड़ी मैं चला नहीं सकता वो गाड़ी मेरे किस काम की, मैं उसको देख करके उसके बारे में सोचूं तो क्यों सोचूं। जिस दुनिया की चीज को मैं यूज नहीं कर सकता हम उसको देखते नहीं, तो हमारी है ही नहीं किया, हम क्यों सोचते। एरोप्लेन हमारी बस का नहीं है, ठीक है, हमारे पास नहीं है, नहीं है, हमें कोई उसकी इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार से जो अपने बच्चे होते हैं हम उनको देखते हैं, पराए बच्चों को तो हम नहीं देखते ना। इसी प्रकार से ये देह भी मेरी नहीं है और दूसरी देह मेरे किस काम, उनका मेरा कहते ही नहीं, मेरा कहने की सोचते भी नहीं। तो इसी प्रकार से हमने इन सब देह, ये सारे की सारी देह जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये मेरे किसी काम की नहीं। ये बात हमें अपने आप को बार बार समझानी है। सिर्फ उनको देख करके ललचाईमान होना क्यों, इसलिए जब वो मेरे काम की नहीं है उनके प्रति मुझे संकल्प चलाना क्यों। तो अपनी देह से दूसरे की देह को देखते हम उसको नहीं सोचते उसके बारे में, क्योंकि वो मेरी नहीं है, तो ये देह भी मेरी नहीं है। फिर ये देह किसकी है, बाबा की। लूट ले भाई, पंडित लूटते हैं दुनिया में, वो हमारे पैसे वैसे लूट लेते हैं, ये हमारे एक देह की उसको भी इसने लूट लिया, कहता है तुम ये मुझे दे दो ताकि तुम्हें इससे भी मोह खत्म हो जाए। ठीक है, हम सब आत्मा है, ये देह हमें किराए पर दी हुई है, हम इसका किराया देंगे बाबा को और इस देह से अपना भाग्य श्रेष्ठ लिख, अपनी देह से भी हमें प्यार नहीं कर, बस देह को उतना खिलाना है जिससे ये शरीर चलता रहे, हम अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकते। चलो इस लुटने में भी मजा आ रहा है, ठीक है, या रोए बैठ करके लुटने में मजा आ रहा है। प्रश्न, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का, हाँ जी,
सारे रोना तो खत्म हुआ है, रोना क्यों?
अच्छा, रोना खत्म हो गया,
खत्म हो गया है,
तो मेरा शरीर है उसको लूट लिया, कोई बात नहीं, तो आप सहमत है तो मैं भी सहमत हूँ आपके साथ। बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या, बुद्धि को, प्रश्न क्या है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या, स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी, स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी, उत्तर, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है, ऐसी देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, जो अपने को आत्मा समझेंगे वो एक बाप को ही प्यार करेंगे, जिनको अपनी देह से प्यार नहीं वो किसी दूसरे की देह से भी प्यार नहीं करेंगे, बाप से ही सुनेंगे, क्योंकि अब वो आत्मा है, वो सिर्फ बाप की ही सुनेंगे, बाकी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी की सारी अपने गुण शक्तियों को खो चुकी हैं, उनकी बात सुनकर क्या करें, उन्होंने तो और ही बेड़ा गर्क करना है, उनका तो कहना मान करके अपना ही सत्यानाश कर, ऐसी आत्माओं को तो देखना भी नहीं। हमने उन आत्माओं का सुनना नहीं है, बस तो उनको सुनाना है, क्योंकि हमने बाप का सुनना है, बाप का मानना है, बाप से ही सुनेंगे, लेकिन जो मूढ़मती हैं, जो मूढ़मती हैं, वो देह को प्यार कर, मूढ़मती शब्द कितना अच्छा है, मूढ़मती, गुरुमती किसे कहते हैं, गुरुमती किसे कहते हैं, खराब बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, अक्कल नहीं है जिनके पास, वो देह को प्यार करते, देह को ही श्रृंगारते रहते। अब बताओ, देह से प्यार ना करो ये तो चलो ठीक था, देह का श्रृंगार भी नहीं करते, बाले का बाल काले करना, रंग लगाना चेहरे पर, क्योंकि यदि हमें श्रृंगार करने का संकल्प भी आ रहा है तो ये समझ लो कि अभी मुझे देह से प्यार, देह से प्यार है, श्रृंगार करना माना देह से प्यार है, ओवर ईटिंग करना माना देह से प्यार है, ओम शांति, ओम शांति किसने कहा और किसने सुना, और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया, ऐसे कहेंगे, और यहां क्या कहेंगे,
परमात्मा ने सुनाया और
हम आत्माओं ने सुना, नई बात है ना ये, ऐसी बात तो और किसी सत्संग में होती नहीं। एक लाइन में हम सबको देह अभिमान से देह अभिमानी बनने के लिए मजबूर कर दिया। कितना सख्त है, आपसे ही हमें कहता है पहले तुम आत्मा समझ कर बैठो, देही अभिमानी होना पड़े। यहाँ सत्संग में बैठने के लिए देही अभिमानी होना पड़े। कई यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते, कुछ भी हो जाए बाबा का क्या, बाबा तो कहता रहता है तुम आत्मा हो आत्मा हो। अरे ये देह मिली है, देह के बिना हम कुछ कर सकते हैं? देह के बिना हम क्लास में आ सकते हैं? देह के बिना हम बैठ सकते हैं? बाबा तो बस ऐसे कहता रहता है, उसकी बातें मत सुन, वो सुनते ही नहीं बात, वो अपने मतलब की बात करते। तुम बच्चों को ये मेरी देह है, मेरी देह से मैंने काम कराना है, मुझे ये बाबा ने भाग्य बनाने के लिए दिया है, बस उस देह का मालिक जो है वो परमात्मा, मैं किराएदार। ठीक है, तो ये समझ करके बाबा ने कहा मेरी देह को ज्यादा श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, इनसे बीमारियां होती हैं, ये मत छुपकाया करो, जैसा है सिंपल रखो, नेचुरल रखो। क्योंकि यदि हमने इसको चमकाया, इसको हमने टेढ़ा मेढ़ा किया, तो नेचुरल बात है कि दुनिया की निगाहें खराब हों। तो आप दुनिया को देह अभिमानी बनाने के लिए मजबूर हो रहे हो, उनको मजबूर कर रहे हो कि वो आपको देखे। और मैक्सिमम बहनों की एक ये विशेषता होती है कि वो चाहे कितनी ठंड हो कपड़े नहीं पहनेंगे ताकि वो हमें देखे। मतलब ये उनका एक दृष्टिकोण बन गया है, क्योंकि देह को ही उनका भान बहुत ज्यादा है, देह में ये आग निकल जाए ये बहुत जरूरी है। तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान, शिव बाबा हमको समझाते हैं ये बुद्धि ये अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ, परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते, ये दलाल हो गया। ये शरीर क्या है? दलाल, बिचौलिया है, तुमको समझाने वाला, ये बिचौलिया है तुमको समझाने वाला। वो है इनको भी वर्षा वही देते, शिव बाबा से ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलना, तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए शिव बाबा की तरफ। समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि योग बाप की तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है, भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है, आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई, हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परम पिता परम आत्मा के साथ। वे कहते हैं माम एक कम याद कर, मुझ एक के साथ ही प्रीत रख, मुझ एक के साथ ही प्रीत रख, रचना के साथ मत रख, देही अभिमानी बनो, मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान, इसको कहा जाता है देह अभिमान। फल ये देहधारी तुम्हारे सामने है परंतु तुम इनको नहीं देखो, तुम इनको नहीं देखो, बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए, बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वे तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते, वे तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं, वर्षा परमात्मा बाप से मिलता, परमात्मा बाप से मिलता है। वे बाप कहते हैं तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए, तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ, तुम आत्माओं की क्या कराता हूँ, अपने साथ सगाई कराता हूँ। शिव बाबा खुद अपने साथ सगाई कराता है, देहधारी से सगाई नहीं, इस ब्रह्मा से तुम्हारी सगाई नहीं है, तुम्हारी सगाई किसके साथ है, शिव बाबा। सजनी हम किसकी बनी है, शिव बाबा, साजन हमारा शिव बाबा है, ये ब्रह्मा हमारा साजन नहीं, ये हमारा बड़ा भाई, ये हमारी माँ है, ये हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, ये हमारा फादर है, हमारी माँ भी है तो हमारा फादर भी है, पर तो ये साजन नहीं। देहधारी से सगाई नहीं है, और जो भी संबंध है वो देह के, यहां के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए, बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं, उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पाठ बजाती, जैसे कि वे अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती। ये अंडर हाउस अरेस्ट किसको समझ में आया है, अंडर हाउस अरेस्ट, नजर बंद, बताओ कहां से ढूंढ के लाता है सर। आत्मा इस शरीर में, शरीर रूपी घर में आकर पाठ बजाती है, जैसे कि वे अपने अंडर हाउस अरेस्ट। हम आत्मा इस शरीर के अंदर कैद हुई पड़ी, निकल सकते इस शरीर से, ऐसी कैद हुई है कि हम इस शरीर से निकल नहीं सकते। कितना बीमार हो जाए, कितना सड़ रहे हो, कितना गल रहे हो, कितना कुछ हो, इस शरीर से नहीं निकल। हॉस्पिटल में पड़े तड़प रहे हैं, पर तो इस शरीर से नहीं निकल सकते, आग लगे इस शरीर को छोड़ो। सत्युग में ये योग्यता हम आत्माओं के पास होती है कि हम इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ले लेते। यह बाबा ने हमें समझाया, बच्चे तुम कर सकते हो, तुम इस शरीर को छोड़ सकते हो, इस शरीर से मम्मत को खत्म करो, शरीर जाता है तो जाने दो, इसका उल्टा अर्थ भी नहीं लेना है, क्योंकि मुरली सुनने के बाद कि शरीर से हमें ममत्व नहीं करना, घर गया और जाकर के करंट लगाया, लिख दिया कि परमात्मा ने कहा है कि शरीर से ममत्व नहीं रखना है, अब मैं इस शरीर को छोड़ देता हूं, मर गया, नाम बदनाम ब्रह्मा कुमारी, ऐसा ज्ञान देती है कि मर जाए। उल्टा नहीं ले ले, बाबा ने कभी नहीं कहा कि ऐसे शरीर को जो है ना खत्म करो, बाकी तो उसकी मौत आई थी तो उसको बहाना लगना था, उसने उल्टा लेना था, परंतु तो उल्टा लेने का मतलब है क्योंकि तो कोई भी आत्मा हमें अच्छी तरह से याद रखना है, कोई भी आत्मा एक सेकंड पहले शरीर से अलग नहीं हो सकती, एक सेकंड लेट भी शरीर से अलग नहीं हो सकती। पाठ बजाने के लिए है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पाठ बजाती है। आत्मा एक शरीर से दूसरा लेती है, दूसरा पाठ बजाती। इस समय जो जितना देवी अभिमानी रहेंगे वे उच्च पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। ये शरीर तो कोई काम का नहीं है, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। ये है रावण का राज्य, पराया देश, रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं है। चित्र आदि भी जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं है, बिल्कुल ही मूर्मती है। रावण राज्य में सब मूर्मती हो जाते हैं। जे अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए। बाप कहते हैं मूर्मती जो होंगे वे देह का को याद करते रहेंगे, देह से प्यार रखेंगे। सच बुद्धि जो होंगे वे तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है, ये तो बाप का रथ है। बहुतों को इनसे प्यार हो जाता है, जैसे हुसैन का घोड़ा। उनको कितना सजाते, अब महिमा तो हुसैन की है ना। हुसैन जानते हैं हुसैन का घोड़ा? हुसैन किसे कहते हैं? हाँ, उनका जो पैगंबर हुआ एक हुसैन, और हुसैन का हिंदी में अर्थ होता है हुसैन, हसीन का अपोजिट है। हसीन सुंदर स्त्री को कहा जाता है, हुसैन सुंदर पुरुष को कहा जाता है। और सुंदर पुरुष परमात्मा कहते वो मैं, ये घोड़ा है मेरा। कौन सा घोड़ा है? ये ब्रह्मा बाबा, ठीक है कहने। ये घोड़ा शिव बाबा पर कुर्बान जाता है, इसमें रोने वाली क्या बात है। और उनका जो हुसैन था, और हुसैन की कहानी ये है कि उसने अपनी कौम को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। जैसे हमारे तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दी, इसी प्रकार से उसकी भी कुर्बानी हुई थी, शहादत हुई थी, और उसके लिए रखा गया। जैसे क्राइस्ट के लिए कहा कि उसने भी अपनी कुर्बानी दी, तो वो उसको उस दिन को विशेष मनाते हैं कि आज के दिन क्रूस पर लटकाया गया। तो इसी प्रकार से ये बहुत दुख मनाते हैं, बहुत देर से स्यापा करते हैं कि आज भी, और इनके पैगंबर बैठकर इनको समझाते हैं जितना तुम स्यापा करेंगे उतना हुसैन खुश होगा, हुसैन आप पर खुश होगा, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो तो उसका सबूत यह है कि तुम उस पर स्यापा करो। और वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को मार मार कर, छाती पीट पीट कर, मुंह पीट पीट कर, पीठ पर डंडे मार कर, अपने आप को खुद कोड़े मार करके अपने आप को दर्द देते हैं, और ताकि हम रो सके, रोने के लिए वो अपने आप को पीटते। इसको कहा जाता है ताजिया पीटना, ताजिया का त्योहार कहा जाता है, तो ताजिया मनाते हैं। तो इस दिन मतलब सिया लोग जो है बहुत दुख मनाते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को देखा है टीवी पर कि वो इतना, जो उनका पैगंबर था, इतना दिल से रो रहा था, बता भी रहा था और रो भी रहा था, और सारे उसी के साथ साथ रो रहे थे। मतलब उसने रोने का, जैसे स्यापा करने वाली औरतें होती हैं वो कुछ बोलती जाती हैं और रोते जाते हैं, ऐसे ही वो स्यापा करने वाला रो रहा। तो जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई, हुसैन याद से बाबा कहते मैं हूँ, वो नहीं है। हाँ हुसैन की आत्मा जो सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कोई है नहीं। उसके नाक नहीं, आंख नहीं, मुख नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं, क्या का सुंदर है वो? आंखों से किसी को दिखाई देता नहीं, क्या का सुंदर है वो? कैसे सुंदर है वो? उनकी आत्मा सुंदर है और हम देखते रहते हैं वो कितनी सुंदर है, तब उसके साथ शादी करें। लड़का सुंदर है कि नहीं है? नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करता, नहीं करती। और यहाँ देखना नहीं है, बस सिर्फ उस परमात्मा से प्यार करना है कि वो सबसे सुंदर, सबसे सुंदर। हुसैन की आत्मा आई होगी ना, वे इन बातों को नहीं समझ, वो नहीं समझते, पर तो हमने समझ लेना। अभी इसको कहा जाता है राज से अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राज से का मतलब समझ रहे हैं? राज से स्वयं की कर्म इंद्रियों का राजा बनना। दो प्रकार की इंद्रियां का, एक होते हैं कर्म इंद्रियां और स्वयं में हमने मन बुद्धि संस्कार अपनी सूक्ष्म शक्तियों का भी राजा बनना। जब तक हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा नहीं बनेंगे, तब तक हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा नहीं बन सकते। स्वराज्य, अपना राज्य स्थापन करना, दोनों को नोट करना है इसमें, एक को नहीं। दूसरा अश्वमेध यज्ञ, ये अश्व है ये शरीर, इस घोड़े को इस यज्ञ में स्वाहा करना। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये एक ऐसा यज्ञ है जिसका कभी विनाश नहीं होता। और इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में ज्ञान यज्ञ जो लगातार चलता रहता है, जो आकर के हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता है और इस घोड़े का क्या करता है? स्वाहा कर, इस घोड़े को स्वाहा करता है। और ये यज्ञ अविनाशी क्यों है? जिसे अविनाशी बाप आकर के हर कल अपने निश्चित समय पर ये कार्य करते और कराते हैं। अश्व नाम सुनकर ये अश्वमेध यज्ञ दिखाया है कि प्रजापति दक्ष ने किया था। प्रजापति दक्ष ने, प्रजापति दक्ष कौन है? ब्रह्मा का बेटा। प्रजापति दक्ष ने किया तो उसने क्या किया? उसने घोड़ों को स्वाहा किया, सीधे जिंदा घोड़े ला करके यज्ञ में डाल दिए। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया और उनको हांजी आप इस शरीर को कहेंगे। इसी को समझाने के लिए तो इतनी बड़ी कहानी सुनाई आपको कि ये जो वो नहीं जानते हुसैन का घोड़ा क्या है, तो बाबा हुसैन के घोड़े को लेके आया कि हुसैन मैं हूँ, ये जो घोड़ा है ये मेरा घोड़ा है, मैंने इस घोड़े को लिया और जो ब्रह्मा बाबा का तन है और मैं इसके तन में किराएदार बना हूँ और इसको लूट करके अपना बना लिया है और मैं देखो अपने घोड़े को स्वाहा करके दिखा रहा हूं, तुम भी अपने घोड़े को स्वाहा करो। समझ गए बात को? उनको स्वाहा करते हैं, मतलब वो घोड़े पकड़ कर लाते उठाकर उनका घोड़ों को सीधा यज्ञ में डाला गया। ये सब कहानियां। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ स्वाहा करने का मतलब है अपना तन मन धन बाबा की श्रीमत पर खत्म करना और उनका स्वाहा करने का मतलब है उठाओ और अग्नि में डाल दो। उनकी आग में डालते हैं हम, योग अग्नि से उनको भस्म करते हैं। बाबा की श्रीमत को इतना अच्छी तरह जब अपने अंदर धारण करते हैं, जिसको कहा जाता है कि इसको तो उसके प्यार की आग लगी हुई है, बस इसे और कुछ पूछता नहीं। ऐसा प्यार हमें शिव बाबा के साथ हो जाए और शिव बाबा की हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाएं, बस तो वो योग अग्नि हो जाएगा। तब तक वो योग अग्नि नहीं है जब तक हम बाबा की हर बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब योग अग्नि जल जाएगी तो हमारे अंदर कोई विकार नहीं रहेगा, सब खत्म कर देंगे। ये सब कहानियां हैं जो दुनिया वालों ने लिखी है भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो ये है ना, और हमें बनाएगा हसीन। कैसे बनाएगा हसीन हमें भाई? हम हसीन कैसे बनेंगे? वो अपने गुण और शक्तियां, हाँ कहते हैं। अब एक तो अपने इस जो ऊपर वाला तुमने रबड़ पहन रखा है, मिट्टी का ढेला बांध रखा है अपने साथ, इसको फेंक दो, इसका श्रृंगार करना बंद कर दो। अब मेरे अपना आत्मा का श्रृंगार, मुझे तुम आत्माएं पसंद हो, मैं तुम सब आत्माओं को ले जाऊंगा। मैंने तुम सब आत्माओं के साथ सगाई की है, किसी भी आत्मा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। या तो एक मुरली ने कहा प्यार से मान जाओ, नहीं तो मैं मार के भी लेगा, मैं मार के भी सुधार कर दूंगा। अब प्यार से मानना है तो आपकी मर्जी, यदि मार खा के मानना है तो भी। वो अब सगाई हो गई है, अब वो ले जाएगा, अब जो है ना छोड़ेगा नहीं, चाहे कुछ भी कर, मैं तोड़ता नहीं। कहते तुम क्या कितनी बार मुझे छोड़ छोड़ कर भाग जाओ, छोड़ कितनी भी छोड़ छोड़ कर भाग जाओ, भाग जाओ कोई बात नहीं, आखिर आओगे तो मेरे पास, दुकान तो एक ही, मैं उसके मार मार के तुम्हें ले जाऊंगा। जबकि उसके हाथ नहीं है, पिटाई भी नहीं करता, मार भी तुम्हें खानी पड़ेगी, क्योंकि तुम मुझे छोड़ कर गए हो। तो जिसको आपने मेरे को छोड़ने के कारण दुख दिया, तो वो दुख तुम्हें लेना। अब बताओ राजी खुशी करना है या बिना राजी खुशी करना है, ये सोच लेना सब अपना अपना। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे, फिर सांवरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं, तो पहले सत्व प्रधान है, फिर सत्व रजो तमो में आती है। सत्व रजो तमो में आती है। बाप आकर सबको हसीन बनाकर बना देता है। जो भी धर्म स्थापना अर्थ आते हैं, वे सब हसीन आत्माएं होती हैं। बाद में काम पिता पर बैठ काली हो जाती है, पहले सुंदर फिर शाम बनती है। ये नंबर वन में पहले पहले आते हैं, तो सबसे जाती सुंदर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो ना सके, ये ज्ञान की बातें हैं। बल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से गोरे सुंदर हैं, गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, परंतु सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर हैं। इस समय सब पतित सांवरे, फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सत्व प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते काम पिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाप आया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। या तो याद करना है, एक को देहधारी से प्रीत नहीं रखनी, बुद्धि में ये रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। इन आंखों से देखने वाले जो भी हैं, वे सब विनाश हो जाएंगे। ये आंखें भी खत्म हो जाएंगी, परमपिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है, त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये टाइटल इनको मिले। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर ये गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं तुमको बाप, 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते तुमको बाप, 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने के लिए। मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे। और कोई को याद किया तो सत्व प्रधान बन नहीं सके। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत। विनश्यन्। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है, दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को ही याद करो। इसमें ही मेहनत है, तुम कहते भी हो कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं, वे तो सहज है ना, बाकी याद की ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं, कोई भी होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं है वो जैसे पंडित, ज्ञान में बल कितने भी होशियार हो याद में नहीं रहते तो वे पंडित। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया वे तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। जब वो पंडित की बारी आए, बाप को तुम याद करेंगे तो कहते जी मेरे लिए नाव लाओ, बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में पीछे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे, खाली मुरली सुनने सुनाने में पीछे होंगे तो आप पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे, ये सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठकर समझाते हैं, बाबा बैठकर समझाते हैं। उनको समझाते हैं, उनको नीचे बैठ गया, जब उनको क्या हो गया नीचे बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत हैं, याद में नहीं रहते, मूल बात है याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे, याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्म इंद्रियां एकदम वश हो जाती है। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं, औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से फिर विपरीत बुद्धि विनश्यन की हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है, योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है, योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती है, आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे, आत्मा पवित्र बनती है, सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे, पद भी नहीं पाएंगे। माया चाक रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए, देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही या प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ज रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ज रेगुलर रख सके। बाबा ओपन बात कर रहे हैं, ताकत नहीं है क्योंकि चार्ट रखेगा तो सुधरेगा, चार्ट नहीं रखता तो वो सुधर नहीं सकता। बाबा कितना देखिए वंडरफुल लाइन है ना, परंतु कोई में ताकत नहीं है। हमने चार्ट रखे, चार्ट रखने बंद कर दिए, क्यों बंद कर दिए? मैं अपने आप को ही देख रहा हूं, चैलेंज कर दिया आज बाबा, परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके, सुधर नहीं रहे। रोजाना एक ही बात लिखनी पड़ रही है, फिर हम अपने आप को चलाकी से कह देते हैं, बाबा को सुना देते हैं ना रात के साथ, सुना तो देते हैं, मैं देख रहा हूं, अपने आप को ही देख रहा हूं कि उतना सुधरते नहीं। फिर चार्ज रख के देना भी किसको है, दूसरा चार्ज ना लिखने का चार्ज देना भी किसको है? मतलब कहीं ना कहीं अभी हम अपने आप को रुकती कला में रोके हुए, बस इतना सुधर गया और क्या, सारा मैं नहीं सुधरना है क्या, सारा मैंने ही सुधरना है क्या? अब हमें सारा ज्ञान तो समझ में आ गया है ना, ये चैलेंज है बाबा का, मुझे बहुत चैलेंज लग रहा है, बाबा चैलेंज कर रहा है, परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख, कोई बिरला रख सकते, माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है, सुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं मां मेकम याद, फिर क्या होता है रात को थक गया हूं, क्या चार्ट लिख, सारा दिन बहुत अच्छा से किया है, कागज पे नहीं लिखते हैं, मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूं और वो चार्ट लिख करके फाड़े नहीं और वो रखे रहे, तो कभी कभी वो डिस सर्विस में भी आ जाते। एक बहन ने चार्ट लिखा, किसी भाई के प्रति उसको विचार आया और उसने लिखा कि मेरे को इसके प्रति गंदा विचार आ रहा है और मैंने इसको जीतना है, मैंने इस पर विजय पानी है, और इस प्रकार से जहां जहां जो उसके जीवन में, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। अब वो पत्र किसी और के हाथ में लग गए, अब वो क्या होगा, वो उसे पब्लिश करा दे, डिस सर्विस हो गई, कि ब्रह्मा कुमारी ऐसी होगी, उसने तो अपना सच लिखा, बस उसको लिख कर फाड़ना भी जरूरी है। आपने अपने अपने को सुधारने के लिए लिखना है, परंतु उसको संभाल कर नहीं रखना, उसे तुरंत खत्म कर दो। ये जो YouTube वाले हैं ना, जो आजकल ब्रह्मा कुमारी के एमपी बोल रहे हैं, उन्होंने वो पत्र दिखाए और वो किसी बहन ने लिख दिए, अपना सच लिखा और वो पत्र उसको मिल गए, कैसे भी रद्दी में कहीं से भी, और भेज दिए रद्दी में, उनको रद्दी में भी नहीं भेजू, पता ही नहीं कहां किसके हाथ में क्या हो गया। इसलिए मैं आप चार्ट लिखें परंतु ये बात जरूर ध्यान रखें, इसलिए मैं आपको यहाँ अलर्ट करना मेरा बना के मैं आपको बता दू। ताक लिखो, ईमानदारी से लिखो, परंतु उसे लिखकर पार भी जरूर देना, क्योंकि हम इंसान हैं और जहां हमारी गलती हो रही है उस गलती को अपने साथ बैठकर मन मना भाव करें, अपने आप को बैठकर समझाएं, उसको ठीक करें, परंतु ये नहीं हो कि उसे लिख कर रख दे, एक क्या बन जाए, यादगार बन जाए, वो फिर दूसरे को अलग अर्थ में फैलाने का मौका मिले, ये ध्यान रखना। बाकी सबसे अच्छा यही रहता है कि आप बैठकर बाबा रूम में एकांत में अपने साथ चाय लेते लेते सोए सोए अपने आप को चेक ईमानदारी से करें और चेंज करें। लिखते हो तो लिखो, क्योंकि बाबा ने चैलेंज किया तो उसको लिखो, और नहीं लिखते हो तो बेस्ट यही है कि आप अपने को खुद चेक करो, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, किसी दूसरे को भेजना नहीं है, क्योंकि ये बाबा के टाइम में क्योंकि साकार मुरली है तब बाबा को भेज देते और बाबा फिर किसकी भी गलती को उसको समझा देते थे, परंतु ये नहीं कि इसकी बात दूसरे को बताए। इसलिए बाबा ने ये भी लिखा कि अब कोई पत्र नहीं भेजेगा, अपना देना पोता मेल माउंट आबू में नहीं भेजेगा, पोता मेल में सिर्फ ये भेजना है ओके, यदि आप ओके नहीं है तो ओके पर लाइन लगा दो, बस। हर एक बच्चा अपना पोता मेल भेजे, सिर्फ इतना ही लिखकर भेजे, ओके, ओके है तो ओके, ओके नहीं है तो उस पर एक लाइन। दादियों को पत्र पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करें, बस उनको कोई पढ़ेगा नहीं, या तो ओके है या ना ओके, हम उसको गिनती करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ अपना आपने पोता मेल भेजना है तो इतना भेजना है, लंबे लंबे पत्र लिखकर नहीं भेजने। उसके बाद भी मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहने लंबे लंबे पत्र लिख करके भेजते, मां एकम याद करो तो सभी आशिकों का माशूक हूँ, तो माशूक को याद करना चाहिए ना, माशूक बाप कहते हैं।
हाँ जी, पोता मेरे क्या करना होता
है उसको फिर बता देंगे, अगली किसी क्लास में बता देंगे। तुमने आधा कल्प याद किया है, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो विकार विनाश हो जाए, ऐसा बाप जो सुख देने वाला है कितना याद करना चाहिए, और तो सब दुख देने वाले हैं, वे कोई काम आने वाला नहीं है, अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है, अंत का समय एक हद का होता है एक बेहद का होता है, बाप समझ जाते हैं, अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होती, तुमको अमर बना देते हैं, पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए, कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, तेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे, स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी राजाई को ही कहा जाता है, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को रौरव नर्क तमो प्रधान कहा जाता है, द्वापर को इतना नहीं कहेंगे, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए, खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा, अब ऐसी हालत में अगर मर जाए तो क्या होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिश्चयंती धूल छाई पद पा लेंगे। आजकल दुनिया में फैशन को भी बहुत बड़ी मुसीबत है, अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे किसके नाम रूप में मत खाओ, लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है, वे हैं ही शिव आगे, इसको कहा जाता है वैशाल्य, इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वैशाल्य के रहने वाले हैं, आजकल तो फैशन की जैसी मुसीबत है सब की नजर चली जाती है, फिर पकड़ कर भगा ले जाते हैं, सतयुग में तो कायदे से चलन होती है, वहां तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं, यहाँ तो देखने से दिल लग जाती तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते, अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, बाप के सिवाय कोई बना ना सके, वे है ही रावण संप्रदाय। तुमको अभी राम संप्रदाय बने हो, पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव हैं यूरोपवासी। गीता से कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी हैं, वे तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। बाप बैठ कर जाते हैं, यादव हैं यूरोपवासी जिन्होंने अपने विनाश के लिए ये मुसल आदि बनाए हैं। पांडवों की विजय होती है, वे जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग का की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं। पत्थर बुद्धि है ना, ड्रामा के राज को जरा भी जानते नहीं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ बस जेवर आदि पहनो, कहते हैं बाबा यहाँ जेवर सोचते कहाँ है। पतित आत्मा पतित शरीर को जेवर क्या सौंपेंगे, वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे, सतयुग में तो हमारे पास जेवरों से सजे रहेंगे, अथा धन होता है, सब सुखी ही सुखी रहते हैं, बल वहाँ फील होता है ये राजा है हम प्रजा हैं, परंतु दुख की बात नहीं। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं, वहाँ तो सब सुख मिलता है, दुख अक्सर मुख से निकलेगा ही नहीं। नाम ही है सर, यूरोपियन लोग इनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं वहाँ बहुत बड़े रहते हैं, इसलिए उन्होंने चित्र भी बहुत खरीद करते हैं, परंतु वे स्वर्ग फिर कहाँ गया ये किसी को पता नहीं। तुम तो अभी जानते हो ये चक्र कैसे चलता है, नई सो पुरानी दुनिया, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट सकेंगे, बात को याद करने से ऊंच पद पा लेंगे। अच्छा नीचे नीचे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार कर, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान नंबर एक, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बात से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है, चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बात कितना समय याद रहता है। वरदान गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा दिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का काचा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हैं तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है, इसलिए गृहस्थी नहीं सृष्टि है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए सर्व इंद्रिय जीत बनना है, माया जीत बनो, ईश्वरीय अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है, शिव शक्ति से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, इस कंबाइंड रूप में रहो, इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है, योग लगाने वाले नहीं लेकिन सदा कंबाइंड, अर्थात साथ रहने वाले, जो वायदा है कि साथ रहेंगे साथ किएंगे साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का याद रहे। अच्छा ओम शक्ति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर ईमेल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओके।